नमस्कार आदाब सत श्री अकाल श्रोताओं, मैं साझा मंच मोबाइल वाणी से आज आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ में, और मेरे साथ के एक साथी हैं, मजदूर साथी जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि जो हरियाणा में जो श्रम कानून अधिनियम जो 2021 में जो बदलाव हुए हैं, जिसका मसौदा तैयार हुआ है, उन्हीं सब मुद्दों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या कहना है आपका, आप क्या हैं?
नमस्कार, जो हमारे एक यूनिट है मानेसर प्लांट में, उसमें हम 11 साल से यूनियन चला रहे हैं और एज ए सेक्रेटरी। दो ये अपने लेबर कोड जो आए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और इसका पूरा मतलब आने वाले तबके पे जो श्रमिक वर्ग है उस पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इससे जो हमारी नीचे वाली कैटेगरी है, ज्यादातर आप देख ही रहे होगे कि अपने हरियाणा में क्या, हर जगह पूरे भारतवर्ष में श्रमिक कैटेगरी 85% से ज्यादा ही है। अगर ये लागू होती है तो इसका बहुत ज्यादा आने वाली जनरेशन तो एकदम बिल्कुल एक तरह से बेरोजगार थी इतनी बढ़ी रही है। दूसरा, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, वो पूरा पूरा एक मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है। तो इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और इसको हम किसी भी सूरत पे मतलब आगे इसको पारित नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए रैलियां निकालेंगे अपनी, चाहे हमें संस्थान बंद करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये बिल्कुल गलत है।
तो इसमें ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसपे आपकी जो है मुखालफत है, किस बिंदुओं को लेके आप जो है इस वेज कोर्ट के या इस श्रम मसौदे के खिलाफ है हरियाणा के? 2000
इसमें देखा जाए तो श्रमिक के पक्ष के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। जर्नली ना तो किसी को यूनियन बनाने का अधिकार है, मिनिमम वेज पे आप काम करो, आपको कोई राइट नहीं है इसमें, इसमें ज्यादा सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है, आप यूनियन नहीं बना सकते, और भी आपके जो छोटी मोटी फैसिलिटीज है उन सारी चीजों से वंचित रखा जाएगा। तो पूर्ण रूप से इसको गलत ही है, इसके सारे बिंदु में गलत मानता हूं, इसमें कोई फायदे वाली चीज है नहीं।
एक तरफ जो है हरियाणा 2021 का मसौदा, एक तरफ केंद्र सरकार का जो 44 कोर्ट का कानून था उसको जो है 4 कोर्टों में जो है सीमित किया गया है। तो इस मसौदे में, केंद्र सरकार के मसौदे में, और खास करके जो हरियाणा सरकार का श्रम मसौदा जो तैयार है 2021 में, उसमें क्या अंतर है और किन किन अंतरों पे आपका मतभेद है? कि खाली जो है केंद्र सरकार का जो 44 कोड अधिनियम को जो है उन्होंने बदल के 4 कोड में कर दिया, उसमें से आपको जो है दिक्कत है, या हरियाणा का जो अभी 2021 का जो कानूनी मसौदा श्रम कानून में?
देखो जी, सारी चीजें इसमें सेंट्रल लेवल से ही है, ये तो एक दिखाने वाले लुभाने वाली बात है कि हरियाणा कुछ डिफरेंट है या सेंटर का कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, जो पहले से जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, पहले क्रांति करके जितने भी हमें अपने अधिकार मिले हुए थे, वो सारी चीजें इसमें डिक्लाइन करी जा रही है एक तरीके से। तो मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें किसी की फेवर की बात है नहीं। इसमें टोटल मैनेजमेंट के या अपने सरकार पूंजीपति वर्ग का इसमें ज्यादा फायदा है, चाहे सेंटर का है चाहे हरियाणा का है, वो सब मिली भगत है, इसमें कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि सेंटर से ही अगर चीजें लीड करेंगी तो मुझे लगता नहीं कि स्टेट में अच्छा भी होएगा तो पूर्ण रूप से, क्योंकि बहुत सी चीजें संविधान में सेंटर से ही बनती हैं। स्टेट में तो सरकार का इतना कुछ है नहीं इंटरफेयर, तो सेंट्रली अगर गलत है तो स्टेट का भी गलत है, कुछ अच्छा नहीं है। हमने पढ़ा है इसमें, सब कुछ ऐसा ही है, वो हमें पसंद नहीं है इसमें कोई भी चीज़ें।
तो इसमें जो है 8 घंटे की बात की गई है एक तरफ, कि हम 8 घंटे का जो है कानून करेंगे, 8 घंटे ज्यादा नहीं होगा, और एक तरफ ये है कि अगर श्रमिक से कंपनी में कुछ मशीनों से टूट फूट होती है तो उसके वेतन से 50% सैलरी काटने के आदेश, अगर उससे ऊपर है तो उसे लेबर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन सब बिंदुओं को लेके आपका क्या विचार है, क्या ये गलत है, और किन किन चीजों का, किन चीजों का इस पे ध्यान नहीं रखा गया है?
देखो जी, एक तो ये 8 घंटे का है, ये तो बिल्कुल बहुत पहले हमारे मतलब बहुत पहले,
तो अगर आप तो बरकरार रखा है गवर्नमेंट
8 घंटे का बरकरार रखा है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें भी एक क्रिटिसाइज है कि आगे 10 भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ओवर टाइम का बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म भी किया जा रहा है। तीसरा, जो आप कह रहे मशीनों से रिकवरी, एक जो गरीब मजदूर है काम करते वक्त तो हो भी सकती है, गरीब मजदूर की दुर्घटना भी होती है तो मजदूर की जान भी चली जाती है, उसमें तो गवर्नमेंट इतना कुछ सोच नहीं रही। अगर मशीन को कुछ टूट फूट हो रही है, उसकी एक 9000 का वेतन वाला आदमी कैसे रिकवरी करेगा? ये तो बिल्कुल मजदूरों पर अत्याचार है, इसमें कोई पॉइंट अच्छा नहीं है।
अच्छा, एक तरफ जो है खाने की जो पौष्टिकता का आहार की बात हुई है, उसमें 2400 कैलोरी ऊर्जा के लिए बात की गई है, पौष्टिक आहार की बात की गई, तो कैसे उसको जो है यूनियन या संगठन देखता है कि कहाँ से वो चीज़ मजदूरों को मुहैया करा जाएगी? क्या कैंटीन में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं
जी हाँ बिल्कुल, अगर जिस कंपनी में यूनियंस है वो उनको पूरा पूरा अधिकार रहता है, वो अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं, एक बीच में खाने की क्वालिटी चेक करते हैं, ऊपर से मैनेजमेंट को चाहे वो लड़ाई लगा लो चाहे अपने मीटिंग के माध्यम से वो हर चीज डिसाइड करते हैं, भाई एक दिन ये सब्जी बने एक दिन ये बने। और जिन कंपनी में यूनियन नहीं है वहाँ पे खाने वाने की कोई अच्छी क्वालिटी नहीं। हमारी कंपनी में पहले 2011 से पहले जब स्ट्राइक नहीं हुई थी उससे पहले खाने का ऐसा ही था, उसके बाद हमने स्नैक्स वगैरह की सुविधा करवा, खाने में अच्छा खाना जो हम बार बार चेक करते हैं, उसमें कैंटीन कमेटी का भी गठन करते हैं। तो यूनियन बना से बहुत फायदा है, जिससे टाइम टू टाइम खाने की क्वालिटी भी चेक होती है और हम यहाँ पे अधिकार होते हैं, हम सेफ्टी के फूड एंड सेफ्टी में भी अपना डाल सकते हैं, क्योंकि हमें अधिकार, अगर इन अधिकारों से हमें वंचित कर दिया गया तो हम कहाँ बोलेंगे और हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं।
और इसमें एक जो है छुट्टी का निर्धारण किया गया है कि जो साप्ताहिक छुट्टी है उसको निर्धारित छुट्टी होगी, तो क्या कंपनियों में ये चीज मुमकिन है कि जो संडे की छुट्टी होती है बहुत सारे वर्कर्स बताते हैं कि उस दिन भी उनको बुला लिया जाता है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं और ये कितना बड़ा एक चैलेंज होगा कंपनियों मजदूरों के बीच में बात बनाने का कि उसको सिस्टम को सही करने का, क्या नजर?
देखो जी, 5 दिन 6 दिन वर्किंग के बाद एक छुट्टी का तो है, ये तो बिल्कुल पहले से बना हुआ है, और ये छुट्टियों को अगर ये इस तरीके से खत्म करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है।
नहीं, खत्म नहीं कर रहे हैं वो, क्या लगता है कि ये हो पाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियां तो पूर्ण रूप से चालू रहती हैं, बंद नहीं होती हैं, अगर वो संडे को एक निर्धारित छुट्टी करते हैं तो किस तरीके से मैनेज करना होगा, क्या करना होगा आपको?
संडे को ये हो सकता है कि अपना वीकली ऑफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबको एक छुट्टी मैंडेट है। दूसरा, अगर आपको कोई ज्यादा ही काम है तो उसमें ओवर टाइम का प्रावधान जो पहले से चलता रहा उसको एज इट इज रखें, छुट्टी तो एक सबको चाहिए।
आपका अभी यहाँ पे जो धरना चल रहा है किन मुद्दों को लेकर है और क्या मुद्दे जो हैं इन श्रम कानूनों से जुड़े हुए हैं जो हरियाणा में अभी मसौदा 2021 का तैयार किया गया है, ये भी क्या शामिल है इन धरनों में?
बिल्कुल जी, इन धरनों में पूर्ण रूप से जो जितने मजदूर श्रमिक वर्ग के जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उन सबका मसौदा जो हरियाणा सरकार ने तैयार किया है मजदूरों के खिलाफ, उन सब के खिलाफ हमारी एकदम आवाज हम उठाएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
एक समान वेतन, सामान्य कार्य समान वेतन पे जो चर्चा है उस पे एक बड़ा इशू है कि जो परमानेंट वर्कर हैं वो भी काम करते हैं और एक तरफ जो कैजुअल हैं या ठेका मजदूर हैं उसमें ज्यादा छूट दी जा रही है इसमें, और उनका जो है वेतन जो है हमेशा कम होता है जो परमानेंट
जी हाँ, ये एकदम तो गलत है।
इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि समान वेतन, समान काम समान वेतन का भुगतान हो, तो इसके लिए जो परमानेंट वर्कर हैं आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या आगे का आपकी रणनीति?
हम तो जी इस फैसले को बिल्कुल ये अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि ये सभी को अपना घर परिवार चलाने के लिए जरूरत है सबको, क्योंकि ये एक आदमी 50,000 ले रहा है, एक आदमी 9,700 रुपए ले रहा है
सेम काम का, एक
सेम काम जी बिल्कुल। इसमें ये जो अनुपात है ना, आर्थिक अनुपात सैलरी का, ये बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब ज्यादा अंतर है, तो ये बिल्कुल सही है, सबका समान होना चाहिए।
परमानेंट वर्कर हैं वो क्या जो है जो ठेकेदार मजदूर साथी हैं उनके साथ हैं इस मुद्दों को लेके?
बिल्कुल बिल्कुल,
परमानेंट अपने को कहीं ना कहीं सेफ करने के चक्कर में मैनेजमेंट
नहीं ऐसा, ये मजदूर वर्ग सब एक हैं, बट ये है थोड़ा कि सीनियर कैटेगरी हो जाते हैं, जो एक श्रमिक 20 साल से कम कर रहा है कंपनी ने रेगुलराइज कर रखा है, लेकिन अगर वो अत्याचार हो रहा है तो श्रम वर्ग पे हो रहा है तो उसका परमानेंट भी साथ देंगे, ऐसा नहीं है परमानेंट अलग है कैजुअल अलग है, सभी अपने मुद्दों के लिए एक श्रम वर्ग की एक लड़ाई है, क्योंकि श्रम वर्ग को एक तरीके से खत्म करने का प्रयास हो रहा है और इसमें सब साथ रहेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कैजुअल, बल्कि हम तो खुश है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट भी कंपनियों को थोड़ा प्रेशराइज करे, ऐसे कानून बनाए कि इतना अनुपात नहीं हो, परमानेंट भी है कैजुअल भी है तो उनकी कम से कम सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर हो, इतना नहीं कि एक आदमी 9,000 ले रहा है एक आदमी 50,000-60,000 रुपए ले रहा है।
जिस तरीके से अभी जो है खासकर की मशीनों का चलन बढ़ा है, तो हर जगह पूरी दुनिया मशीनों को चलन बढ़ा, मजदूरों की तादाद हर जगह कम होती गई, ऐसी स्थिति में सबको रोजगार देने को आप कैसा समझते हैं? क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है, संभव है कि जो है सबको रोजगार ऐसी मशीनरी दौर में मिल पाए?
नहीं, ये तो सर थोड़ा इतना है नहीं सबको, लेकिन कुछ न कुछ नए रोजगार के क्षेत्र भी जैसे खुल रहे हैं, गवर्नमेंट बढ़ावा दे, नई नई इंडस्ट्रीज लगे, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज में नित नए वो है अपने भाई निजीकरण कर रहे हैं, तो उनकी मनमर्जी चल रही है, नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी तो रोजगार मिलेंगे, तो ये तो एक बड़े अपने आप में बड़ी समस्या है ही।
मशीनों के चलन से आपकी नजर में कितने मजदूर साथियों को हटाया गया जिनकी जगह पे मशीन ने उनकी जगह ले ली, आपको क्या लगता है?
अभी हमारे में कुछ नहीं, एक दो रोबोट्स आए हैं, उनसे सिर्फ 10-15 हमारे मजदूर कम हुए हैं, बाकी इतना ज्यादा नहीं। सारा हमारा फिजिकली और वैसा वर्क है, इसमें हमारा ज्यादा टेक्निकली या रोबोट वाला सिस्टम अभी नहीं आया है, लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज में उनमें बड़े लेवल पर रोबोट सिस्टम है, तो उसके
लेके क्या आपकी यूनियन तैयारी कर रही है? जो 15 लोग निकाले गए
उनका हमारा लेबर कोर्ट में चला हुआ है और इनके लिए मैनेजमेंट से बात करते हैं, लेकिन उनका तो वही है रवैया, तो इसके लिए सरकार
परमानेंट हैं या
कैजुअल वर्कर्स हैं जो भी? जी हाँ, यही है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यूनियन से एक साथी को जो बता रहे थे किस तरीके की समस्या है और किस तरीके की ये लड़ाई आगे और चलने वाली है। यदि आप भी कोई बात कोई खबर यहाँ पर साझा करना चाहें तो साझा मंच मोबाइल वाणी खबर सुनने के दौरान नंबर 3 दबाकर अपनी बात साझा करें। धन्यवाद।
चलिए जरूर।